Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون سورہ قلم کی ان آیات پر بیان چل رہا ہے کہ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے. تو میں نے اس پر یہ بیان کیا تھا کہ اگر حساب و کتاب نہیں ہے, قیامت نہیں آئے گی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد سب بولو ختم, اور مرنے کے بعد سب فنش کا مطلب یہ کہ اچھے کام کرنے والا اور برا کرنے والا دونوں برابر. اس کا مطلب ایسا ہی ہے, بس جو مرضی کرو. تو اللہ نے اسی پہ کہا مالکم تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون تم کیسی باتیں کر رہے ہو. یعنی ایک آدمی اچھا عمل کرے اور ایک برا عمل کرے, دونوں کا انجام سیم ہو, مالکم تمہیں کیا ہو گیا. کیسا انداز ہے قرآن مجید. ام لکم کتابن فی ہی تدرسون, اللہ فرماتا ہے کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ باتیں پڑھی ہیں. ہیں بھائی, ام لکم کتابن, تمہارے پاس کوئی, وہ جو کہا تھا نا یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ مرنے کے بعد کیا ہو جاؤ گے, فنش, ختم. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی بک ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون, اصل میں دو نظریے تھے, دو, اور آج بھی یہ دونوں ہی نظریے ہیں. ایک نظریہ تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب سرے سے ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس کے ماننے والے بھی بہت تھے, اس نظریے کے, کہ مر گئے تو مٹی ہو کے سب ختم. اصل میں دیکھو کیا بات سے بات نکلتی ہے ہمارے, میں تو یوٹیوب پہ سنتا رہتا ہوں نا, جب ٹائم ملتا ہے تو فیس بک پہ بھی دیکھتا ہوں کہ موبائل پہ آ رہے ہوتے ہیں مختلف مذہبی خطیبوں کے کی تقریریں, چند ایک کو چھوڑ کر, سوائے قصے کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی کربلا کا سیزن چلے گا تو پورا اسلام کس میں ہوگا, کربلا میں. اگر یہ ہوتا نا کہ کربلا سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان پر پورے پورے بیانات ہوتے تو بھی ٹھیک تھا, کیونکہ پریکٹیکل لائف جو ہماری عملی زندگی ہے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنا بھی مقصد نہیں ہوتا. تبھی بہت سے لوگ نا مذہب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں کہ یار ان کی باتیں سنو بیکار, شخصیتوں کو مقصد بنا لیا ہے. یاد رکھو اسلام میں شخصیتیں مقصد نہیں ہوتی, مقصد صرف ایک ذات ہے, وہ کیا ہے, اللہ. نبی جو دنیا میں آئے وہ بھی اللہ سے ملانے کے لیے, نبی کا مقصد بھی کیا ہے, اللہ سے ملانا. قرآن کے الفاظ دیکھو, یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, کہ اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس جائیں گے، سورہ یہ گیارہواں پارہ ہے، گیارہویں پارے کی پہلی آیت، جب آپ غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے مدینہ، تو منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آئیں گے آپ کے پاس، عذر پیش کریں گے جھوٹے، لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے نالائقوں سے خوش نہیں ہوتا۔ یہاں کیا نقطہ مل رہا ہے کہ نبی کی خوشی بذات خود مقصود نہیں ہے، اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو، اگر اس میں کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ کار فرما نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ خوش ہو بھی گئے نا تو اس خوشی کا شرعاً اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس خوشی کے پیچھے اللہ کی خوشی مقصود نہیں ہے۔ یہاں علماء نے اس آیت کے تحت یہ علمی نقطہ بیان کیا ہے، اور یہ نقطے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان کیا کرتے تھے، خاندانی نقطے، اللہ نے ان کو بہت ذہانت دی تھی، انہوں نے اس آیت سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اس لیے خوش کیا جائے گا کہ آپ کو خوش کرنا در حقیقت کس کا خوش کرنا ہے؟ اللہ کا، اور آپ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی حیثیت سے نبی کو خوش کرنا یہ مقصود ہے، جیسے کوئی سفیر آئے نا آپ کے پاس کسی ملک کا، آپ کا وہ ماموں بھی لگتا ہے اور وہ امریکہ کا سفیر بھی ہے، اتفاق سے آپ کے ماموں کیا بن گئے امریکہ میں، مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے میں بار بار کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب وہ جب ایئرپورٹ پہ ملنے کے لیے آ رہا ہے آپ سے، آپ گئے پروٹوکول کے لیے اور خوب چائے پلا رہے ہیں، لڈو کھلا رہے ہیں، یہ امریکہ بڑا خوش کہ میرے سفیر کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، تو آپ امریکہ سے کہتے ہیں بھائی میرے ماموں ہیں اس لیے میں ان کو اتنی عزت دے رہا ہوں، امریکہ خوش ہوگا اس پہ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ابے بھائی تم پچھلے ہفتے بھی آ گئے تھے یار، امریکہ خوش ہوگا اس پہ؟ بولو نا، جاؤ شابش ماں جا کے کھیلو، چلو چلو چلو، چپ کر کے بیٹھنا، امریکہ خوش ہوگا؟ وہ کہے گا آپ اس حیثیت سے ان کو عزت دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے کیا ہیں، ماموں ہیں، یا آپ کے چاچو ہیں، یا آپ کے کچھ بھی ہیں۔ امریکہ کہے گا اگر اس حیثیت سے عزت دے رہے ہو کہ یہ میرے کیا ہیں، سفیر، تو پھر جتنا پروٹوکول دیں گے یہ حقیقت میں اس کو نہیں ہوگا بلکہ ملک کو ہوگا، کنٹری کو ہوگا، کہ یار ہمارے سفیر کی عزت، سفیر کی بے عزتی کس کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے؟ اس کنٹری کی۔ اگر پاکستان کے سفیر کو کوئی ملک ذلت کے ساتھ نکال دے تو فوراً گورنمنٹ حرکت میں آئے گی نا، آئے نہ آئے لیکن آنا تو چاہیے نا، ہمارے ہاں تو رکشے الٹے چل رہے ہیں، گورنمنٹ حرکت میں نہیں آ رہی، بھی بارشیں ہوئی ہیں نا، رکشے سارے کیا چل رہے ہیں الٹے، گورنمنٹ حرکت میں نہیں آ رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت، آپ بشر تھے، آپ انسان تھے، آپ ہاشمی قریشی، اس حیثیت سے بھی آپ کا بڑا مقام ہے کیونکہ سب سے اعلیٰ نسب میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، عرب میں پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اس حیثیت سے بھی آپ کا ایک مقام۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو مقصد ہے وہ اس حیثیت سے نہیں، بلکہ اس حیثیت سے آپ کو راضی کرنا کہ آپ اللہ کے کیا ہیں، سفیر ہیں۔ تو اس میں پہلے اللہ ہوگا، بعد میں رسول۔ بھائی امریکہ کے سفیر کو یا سعودیہ کے سفیر کو اگر آپ عزت دے رہے ہو تو سعودیہ کو سامنے رکھ کے دو گے نا۔ ایک مثال ہے، سعودی عرب نے اپنا سفیر بھیجا، آپ کو پتا چلا بھائی سعودی عرب کا سفیر ہے، گلے مل رہے ہیں، بڑا پروٹوکول، سعودی عرب نے فوراً اعلان کر دیا بھائی یہ میرا سفیر نہیں ہے، فوراً آپ کیا کرو گے؟ بھائی معذرت چاہتا ہوں، پتلی گلی سے نکلیں، فوراً رویہ چینج ہو جائے گا نا، فوراً چینج ہو جائے گا رویہ آپ کا۔ क्योंकि आप असल में उस सफीर की हैसियत क्या थी कि वो फला मुल्क का नुमाइंदा है, तो मुल्क की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम मखलूक में सबसे अफजल और बरतर हैं, इस हैसियत से नहीं कि आप अरब थे, इस हैसियत से नहीं कि आप कुरैशी हैं, इस हैसियत से नहीं कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, ना 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 ना, इस हैसियत से कि अल्लाह ने सारी दुनिया के सारे इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए जो सिलेक्शन की है वो किसकी, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस हैसियत से अगर अल्लाह के नबी की पैरवी होगी, आपको राजी करेंगे, तो इसमें अल्लाह पहले होगा, नबी बोलो भाई बाद में, क्योंकि इसमें असल मकसद किसको राजी करना है, अल्लाह को, अल्लाह की रिजा के लिए नबी को राजी किया जा रहा है। मुनाफिक क्या करते थे कि जब तबूक से वापसी पर वो ये देखा उन्होंने, बल्कि बाद मुखलिस सहाबा भी जो गजवाए तबूक में पीछे रह गए थे, मुनाफिकीन ने क्या किया और मुखलिसीन ने क्या किया, अब दोनों का आप देखें। मुनाफिकीन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जाके नबी के सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे गजबनाक होंगे कि इतनी सख्त मुसीबत में तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। मुनाफिकीन ने आपस में मशवरा किया कि हम नबी को तकलीफ में देखना बोलो भाई नहीं चाहते, तो झूठ बोल दो जाके कि हमें ये उजर था, ये उजर था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ भी नहीं होगी, आप हमसे खुश भी हो जाएंगे। तो ये वो खुशी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मलहूज रखा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिनहाइफुर रसूल राजी करने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि रसूल की हैसियत से आपको राजी करते तो कहते पहले अल्लाह, और अल्लाह झूठ बोलने पर राजी बोलो भाई नहीं होता। इन्हीं के लिए अल्लाह ने फरमाया, ए नबी अगर आप इनसे राजी हो भी गए, अल्लाह नहीं होगा राजी, इनको बता दें, ठीक है नबी को खुश कर लो, अल्लाह राजी नहीं होगा। और जो मुखलिस थे, हिलाल इब्ने उमैया, काब इब्ने मालिक, मुरारा इब्ने रबी रजी अल्लाह अन्हुम, ये तीन सहाबी मुखलिस थे, ये पीछे रह गए। इन्होंने क्या सोचा कि भाई नबी की रजा बजात खुद मकसूद नहीं है, वो मकसूद है अल्लाह की वजह से, तो आज हम सच बोलेंगे नबी नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर झूठ बोले तो नबी तो खुश हो जाएंगे लेकिन अल्लाह नाराज। तो इन्होंने साफ साफ आके कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब इब्ने मालिक से पूछा, अलम तकुन कदिबताता वहरक, काब इब्ने मालिक तुम्हारे पास सवारी नहीं थी तबूक में जाने के लिए, तो उन्होंने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह सब कुछ मेरे पास मौजूद था, कोई उजर नहीं, कोई उजर नहीं पेश कर सकता मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से बोलो भाई सुर्ख हो गया, देखो तकलीफ हो रही है ना आपको, लेकिन काफी बने वाले क्या सोच रहे हैं, भाई अगर अल्लाह को नाराज करके अल्लाह नाराज हो जाएगा, मैं भी, वो फरमाते हैं कि मुझे इतने लोगों ने वरगलाया के झूठ बोल दो, कि करीब था कि मैं भी कुछ, भाई नबी की ये तकलीफ तो नहीं देखी जाती थी ना सहाबा से, तो वो क्या कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह कोई उजर मेरे पास नहीं, आपका चेहरा अनवर गुस्से से क्या हो गया सुर्ख, और आपने फरमाया कुम, उठ जाओ यहां से। सहाबा के लिए ये जुमला पहाड़ से कम नहीं था, जितना उनको इश्क मोहब्बत थी ना नबी से, उनके लिए ये जुमला, ये कहना आसान है, जिस पे गुजरी होगी वो जानता है इस जुमले का वजन क्या था। कुम हत्ता यग़्ज़ी अल्लाहु फीक, इन बच्चों को कंट्रोल करें भाई, यार मस्जिद के कोई खादिम है ना, ऊपर जाके जरा बच्चे शोर मचा रहे हैं। कुम हत्ता यग़्ज़ी अल्लाहु फीक, उठ जाओ यहां से, अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला करेगा। और ये भी नहीं कि वक्ती जज्बातों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबा के बारे में हुक्म दिया कोई इनसे बातचीत नहीं करे, इतना सख्त बायकॉट करवाया कि फरमाते हैं कि हम, हमारे लिए मदीना की गलियां अजनबी हो गई थी, हत्ता कि इनकी बीवियों ने भी नबी से आके पूछा या रसूल अल्लाह हमें साथ रहने की इजाजत है, आपने फरमाया तुम भी अलग ही इख्तियार कर लो, बीवियों को हुक्म दिया, दो सहाबी थे उनकी बीवियों को بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی. باقی کعب ابن مالک جوان تھے, ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو. یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں. کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا, ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا, ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا. شیطان ورغلا سکتا ہے نا, ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے. آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پی لے گا زہر کا پیالہ, یہ نہیں بیٹھے گا سامنے. یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں. یہ بند کمرے میں بیٹھ کر مناظرے کے چیلنج ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو. کوئی اس چیلنج کا جواب دے, کوئی اس چیلنج کا جواب دے, ایسے ایسے دعوے. جب جواب دینے کے لیے آدمی کہتا ہے آؤ, کہتے ہیں مناظروں سے اسلام نے کیا کیا ہے. یہ باتیں کرنے سے یہ اسلام خوش ہوتا ہے؟ اس کو ایڈٹ نہیں کرنا, بتا رہا ہوں میں آپ سے, کہہ رہا ہوں سب یہ اپلوڈ ہونا چاہیے. بھائی تم مجھے سامنے نہیں بٹھا سکتے تو کم وقت کسی کو میں سوال پرچی پہ لکھ کے دے رہا ہوں نا. تم کسی بندے کو بتاؤ کہ یہ سامنے بیٹھے گا, سوال مفتی طارق مسعود کے ہوں گے, بندہ تمہارا اپنا ہوگا. مجھے نہیں آنے دیتے, بندے کو بٹھا دو وہ سوال سامنے رکھ کے تم سے پوچھ لے. اس کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ یار آپ اپنا کوئی بھتیجا بھانجا بھیجو, یا اپنا کوئی بھائی بھیجو, یا اپنا کوئی رشتے دار بھیجو جس میں پھٹے کا بالکل بھی خطرہ نہ ہو. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مناظروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. ارے آپ کا اپنا آدمی ہوگا, صرف سوال میرے ہوں گے. وہ سوال جب وہ آپ کے سامنے پڑے گا تو آپ نے اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالنا ہے. کتنا ہلکا کر دیا نا معاملہ. اس کے بعد بھی کمبخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتے, سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہے بیٹھ کے. تو علمی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام, جس کو کمبخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. تیرا کام یہی ہے, الو بنا رہا ہے لوگوں کو. تراوی کے مسئلے میں طبیعت سے الو بنایا, مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق پر میں نے بیان کیا تھا اس میں طبیعت سے الو بناتا چلا جا رہا ہے, میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا. پھر ایک اور مسئلہ تھا تراوی کا مسئلہ اور مرد اور عورت کی نماز میں فرق پر جو میں نے بیان کیا تھا. اس مسئلہ اشرف علی تھانوی کا جو کلمے کا جھوٹ اس نے الزام لگایا ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اس میں جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے مسلسل. اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا. ایک دفعہ سامنے بٹھا دو یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا. جھوٹ بول رہے ہیں مولانا اشرف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, اور اس کے چمچے ابو حنیفہ کے خلاف سنیں گے سب کچھ, حضرت معاویہ کے خلاف, حضرت ابو سفیان کے خلاف, صحابہ کے خلاف سنیں گے. اس کے چمچے جب اس کے خلاف بولا جائے نا, ایک لفظ دلائل سے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ان تلوں میں تیل میرے بھائی نہیں ہے, بٹھاؤ سامنے. نہیں بٹھاتے اپنا بندہ بھیجو, سوال میں لکھ کے دوں گا, لیکن میں پہلے یہاں ویڈیو پہ سوال ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ اس میں ایڈیٹنگ نہ ہو کہ یہ میرے محترم سے سوال ہے اور محترم نے یہ خیانتیں اپنے بیانات میں کی ہیں, یہ چیلنج کی ہیں جن کا چیلنج کا یہ جواب ہے. تو ان جواب کا آپ سے کیا چاہیے؟ بولو بھائی جواب چاہیے. تو وہ سامنے پڑھ دے ان کے. اس میں کون سا پھڈا ہوگا بھائی؟ میں ہوں گا ہی نہیں سامنے, میرا پرچہ ہوگا سامنے, ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کو گھمایا جا رہا ہے. تو یہ جو صحابہ کے خلاف ابھی کتنا اچھا بل پاس ہوا تھا, تحفظ اسلام یہی نام تھا نا بھائی, جن صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, آپ ان کے خلاف گالیوں کو الاؤ کر رہے ہو ملک کے اندر. دل میں یہ تھا نا کہ کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, اس کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ بل پاس ہونے سے رہ گیا. تو یہ ہماری دینی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کیوں اسمبلی میں شور نہیں مچاتی؟ سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. دو چار ایشوز ہیں جس پہ بس بھیڑ بکریوں کی طرح عوام ساتھ دیتی ہے تو اس پہ سب ساتھ ہو جاتے ہیں. तो जो करने के काम है कोई उसकी तरफ तवज्जो, बोलो भाई, नहीं दे रहा। तो कहां से कहां बात चली गई है। जब सहाबा के बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं ना, तो फिर जाहिर है क्या कुर्बानियां उन लोगों की भाई। तो काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु गज़वाए उहद में भी शरीक रहे, गज़वाए खंदक में भी। वो कह सकते थे मैं सब में शरीक रहा, तो मेरा ऐसा बायकॉट कि मुझे कहा जा रहा है मजलिस से उठ के चले जाओ। हम जैसे नालायक होते तो क्या हाल होता हमारा, जरा जरा सी बात पे कैसे हम लाल पीले हो जाते हैं। वो चले गए उठ के, क्यों? इसलिए कि वो नबी की जात को नहीं देख रहे भाई। किसी से जाती जब मसला हो, किसी से जाती मोहब्बत हो, जात का मसला हो, तो वो इतना बर्दाश्त बोलते क्यों नहीं, नहीं करता। बॉस को बर्दाश्त नहीं करते लोग, वो ये देख रहे हैं कि ये अल्लाह के क्या हैं, नुमाइंदे हैं भाई। जब अल्लाह किसी बात का, ये जो कह रहे हैं ना चले जाओ, तो ये नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। यहां अकड़ दिखाना, ये अल्लाह के सामने अकड़ दिखाना है जिसने हमें पैदा किया। तो सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, वो इस हैसियत से कि आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नहीं है, आप सैयदुल अंबिया और रसूलुल्लाह हैं। कितनी कुर्बानियां, लेकिन नबी ने हुक्म दिया बीवी को भी अलग हो जाओ। अकेले फरमाते हैं काब इब्ने मालिक, मैं 40 दिन इस हाल में रहा हूं कि कुरान ने मेरी कैफियत को बयान किया, ज़ाकत अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद क्या हो गई, तंग हो गई, ऐसी जमीन हो गई। फरमाते हैं कि मैं सलाम करता तो कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। इसी दौरान फारिस के बादशाह ने एक लेटर भेजा, खत भेजा आपके पास कि हमने सुना है कि तुम्हारे साथियों ने तुम्हें जो मकाम मिलना चाहिए वो मकाम नहीं दिया, तुम इज्जतदार आदमी हो, तुम्हारे साथ ये कुछ हो रहा है, आ जाओ हमारे पास। कितनी बड़ी आजमाइश थी कि नहीं थी? दुश्मन फायदा उठाता है ना ऐसे मौके पे। और कितना प्रोटोकॉल मिलता है जब फारिस चले जाते, फौरन वजारत मिल जाती है। यहां क्या मिल रहा है? इतनी कुर्बानियों के बावजूद एक गलती पर बायकॉट, और ये पता भी नहीं है कि ये बायकॉट कभी खत्म भी होगा कि नहीं। काब इब्ने मालिक कह रहे थे कि मुझे ये खौफ था कि इस हाल में मेरी कहीं मौत ना हो जाए, मेरी मौत इस हाल में हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज हो तो मेरा बनेगा क्या। तो जैसे ही वो खत मिला है ना बादशाह का, आप फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह ने एक आजमाइश मुझे दी थी, मैं उसमें नाकाम हो गया, तबूक में शरीक नहीं हुआ, ये दूसरी आजमाइश में भी कहीं नाकाम ना हो जाऊं, उसे फाड़ के आग में फेंक दिया उस खत को। 40 दिन इसी तरह गुजरे हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सहाबा की तरफ रुख किया और फरमाया कि आपका चेहरा जो है ना चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा था। आपने फरमाया कि काब इब्ने मालिक को खुशखबरी सुना दो और उन दो सहाबी को भी कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली है। सहाबा इतने खुश हुए। जब कोई खुशी की खबर किसी दोस्त को पहुंचानी हो तो हर आदमी कोशिश करता है मैं बताऊं। तो वो सहाबी जो है ना एक फौरन तेज रफ्तार घोड़े पे बैठे कि दूसरे से पहले मैं पहुंच जाऊं। कहते हैं लेकिन दूसरे सहाबी ने सिला पहाड़ पे चढ़कर जो है वो ऐलान कर दिया, या काब इब्ने मालिक अबशिर, बस इतने लफ्ज कहे उन्होंने। हजरत काब इब्ने मालिक का घर दूर था मस्जिद से, तो कहते हैं मैं अपने घर की छत पर नमाज पढ़ रहा था कि मुझे पहाड़ से आवाज आई फजर के बाद कि काब इब्ने मालिक खुशखबरी कबूल करो। बस इतना लफ्ज मैंने सुना और मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। तो वो जो घोड़े पर बैठ के गए थे ना, वो कहते हैं आवाज घोड़े की इस रफ्तार से तेज, उस जमाने में जेट तैयारे नहीं ईजाद हुए थे जो आवाज से भी तेज होते हैं, वरना वो तैयारे में बैठ के चले जाते। तो या काब इब्ने मालिक अबशिर। तो जैसे ही वो आए ना खुशखबरी लेके, फिर वो आवाज तो उन्होंने इसलिए पहुंचा दी कि घोड़े से पहले मेरी आवाज पहुंच जाए। तो जैसे ही आवाज पहुंची है तो दो सहाबी ने खुशखबरी दी थी, एक घोड़े पे आए और दूसरे वहीं से ऐलान करके फिर पैदल आ गए। उन्होंने कहा जो बात थी पहुंचानी थी पार्सल तो कर दी है, अब आराम आराम से आ जाओ। तो जब ये आए हैं तो हजरत काब इब्ने मालिक इतने खुश थे, फरमाते हैं मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता था और कुछ भी नहीं था, तो मैंने वही उनको हदिया कर दिया, दो कुर्ते या एक कुर्ता, क्योंकि उन्होंने खुशखबरी सुनाई है ना। आज एक और बात भी, हमारे यहां थैंक यू से आगे लोग बढ़ने के लिए तैयार किसी के साथ कुछ भी कर लो सिवाय शुक्रिया थैंक यू इसके अलावा कख भी नहीं करेगा। वो रफी भाई पहले रिश्तों का काम कर रहे थे ना, मैंने उनसे कहा फीस रखे, कह रहे नहीं यार, तो विचार है इतने खून पसीने बहा के किसी का निकाह कराओ, रोकड़ा जेब से, चलो अगले ने फीस नहीं रखी, आप खुश होके हदिया दे दो भाई, क्या ख्याल है यार, आपने मुझे रिश्ता दिला दिया, मैं तो अरसे से तलाश कर रहा था, आपका बहुत शुक्रिया, ये मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, गिफ्ट है। ये खानदानी होने की अलामत होती है इंसान के। नहीं जी, हाँ कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रफी भाई ने बताया कुछ लोग ने बहुत कोशिश की कि नहीं भाई हम आपको गिफ्ट देंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लिया, फिर वो भी उन्होंने कहा खानदानी चल रहा है तो फिर आओ मुकाबला करो, तुम दो हम नहीं लेंगे। तो लेकिन मेजॉरिटी की जो हमारे कौम की हालत है ना, ये इनसे निचोड़ के निकालो तो ठीक है, टोपियां करा करा के पैसे कमाओ, चीजें पहनाओ इनको, फिर पैसे निकालो तो डबल दे देंगे। तो ये सहाबा की सुन्नत है, उन्होंने कहा खुशखबरी दी है इन्होंने मुझे, इतनी अच्छी खबर है तो अच्छी खबर पे कुछ तो होना चाहिए ना, तो जब कोई अच्छी खबर दिया करे ना, कुछ ना कुछ कोई खुशखबरी सुनाया करे, कुछ गिफ्ट दे दिया करे उसको। तो खैते में खैर मस्जिद में आया तो मैंने देखा कि इस तनार वजहु कैन वजहु कितअतु कमर, आपका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद का टुकड़ा। और बशारत के अल्फाज जो नबी की जबान से निकले उस वक्त, या काब इब्न मालिक अबशिर बि खैर यौमिन मर अलैका मुंधु वलदत का उम्मुक, क्या मजा आया होगा हजरत काब इब्न मालिक को यह सुन के, ए काब मैं तुझे खुशखबरी देता हूं ऐसे दिन की कि जब से तेरी मां ने तुझे जना है, ऐसा खुशी का दिन आज तक तेरी जिंदगी में नहीं आया, ऐसे दिन की मुबारकबाद। हम मुबारकबाद देते हैं भाई, ईद का दिन है, मुबारक हो, आपकी शादी हो गई, समझ में नहीं आ रहा मुबारक दें या क्या, अभी तो बाद में पता चलेगा, आपके बच्चा पैदा हो गया, मुबारक हो, ऐसा ही होता है ना। ये अल्फाज हमने किसी को कहे हैं कि आज ऐसा दिन है कि जब से पैदा हुए ऐसा दिन आपकी खुशी का आपकी जिंदगी में नहीं आया, तो ऐसी खुशी के दिन की मुबारकबाद। तो नबी के अल्फाज क्या है, अब सिर बिखैरी यौमिन, सबसे बेहतरीन दिन, यानी खुशी के लिहाज से। वैसे तो बेहतरीन दिन वो था जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया ना, लेकिन खुशी जिस दिन सबसे ज्यादा हो रही है, आपने फरमाया जब से तुम्हारी मां ने तुम्हें जना है ऐसा खुशी का दिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया, उस दिन की मुबारकबाद कबूल करो। तो अब जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, इतना लंबा वाकया मैंने जो खींचा है, आगे सुनो जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस्लाम में सब कुछ क्या है, अल्लाह, अल्लाह पैगंबरों को भेजता है अपने इंट्रोडक्शन के लिए, अल्लाह चाहता है सब किसकी तरफ आए, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह के सिवा किसी जात को मकसूद बना लोगे अल्लाह को पसंद नहीं है। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का ज़हन बनाया, और कुरान भी यही कहता है। तो अब देखो क्यों नबी की ट्रेनिंग कैसी थी, सहाबा को कैसा नबी ने, ये जो फलसफा मैं आपको बता रहा हूं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कैसा दिमाग में उनके उतारा था। जब नबी ने ये खुशखबरी सुनाई है, अबशिर बिखैर यौमिन मर अलैका मुंधु वलदत का उम्मुक, ऐ काब तेरी मां ने जब से तुझे जना है उस दिन से लेके आज तक तेरी जिंदगी का जो सबसे खुशी का दिन है, उसकी खुशखबरी कबूल कर, उसकी मुबारकबाद कबूल कर। तो फौरन काब इब्ने मालिक ने क्या कहा है, अमिन का अमिन इंदिल्लाह, या रसूल अल्लाह ये खुशखबरी आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या अल्लाह की तरफ से, नहीं आ रही बात, क्योंकि मैंने जो 40 दिन टेंशन उठाई है ये किसके लिए उठाई है, अल्लाह के लिए, क्योंकि मैं अगर आपको राजी करना चाहता तो जैसे मुनाफिकीन ने उस वक्त घुमाई बातों को मैं भी घुमा लेता, तो ये टेंशन होती नहीं, ये तो हम सब किसके लिए कर रहे हैं। तो ये खुशखबरी मुझे इसकी जो है ना कंफर्मेशन चाहिए, मुझे इसकी तसल्ली चाहिए, हल मिन का अम मिन इंदिल्ला, ये जो आप बशारत दे रहे हैं आपने मुझे माफ किया है या अल्लाह ने किया है। भाई दो जिहतें, नबी भी तो नाराज हो गए थे ना, तो काब इब्न मालिक के दिल में ख्याल आया भाई अभी अल्लाह ने तो हो सकता है तौबा कबूल ना की हो, उसके लिए अलग से, नबी जो जाती तौर पर भी तो नाराजी होती है ना इंसान को, भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के कमांडर हैं, अमीर हैं, खलीफा हैं, इस हैसियत से भी तो इंसान नाराज होता है। तो हो सकता है इस हैसियत से आप नाराज हुए हो और आप अब खुश हो गए हो, तो जो असल मसला था वो तो अब भी क्या है, अटका हुआ है। तो फौरन फौरन ये सवाल करना, देखो होता क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते कि अबशिर बि खैर यौमिन, सबसे बेहतरीन दिन की मुबारकबाद कबूल करो। आप फरमाते या रसूल अल्लाह कबूल की, खुश होते या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमाए अल्लाह ने आपको राजी कर दिया मुझसे। अब थोड़ी देर के बाद पूछते या रसूल अल्लाह मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो मुझसे राजी हो गए हैं, अल्लाह भी हुआ है कि नहीं हुआ? ये थोड़ी देर बाद भी तो हो सकता था ना यार। नहीं, वो तलवार कहां है भाई, किधर गया? आपको बोला है मैं मजाक थोड़ी करूं, तलवार यहां रोब होता है भाई, हिला के रखा करो तलवार यहां पर। सवाल समझ में आ रहा है भाई? हम होते अव्वल तो हम पूछते ही नहीं, अव्वल तो यहां तक हमारी तो नौबत पहुंचती नहीं। हम तो कहते हैं भाई मैं इतने कुछ कारनामे सर अंजाम दे चुका हूं भाई, क्या छोड़ो यार, हमने तो भाई अपनी तरफ से कोशिश कर ली। जैसे आज होता है ना, इसलिए मैं कहता हूं जो अब्बा को राजी है ना, जो लोग कहते हैं अब्बा यूं है तो अब्बा अब मेरा मीटर घूम गया है, और भाई अब्बा को जो खुश करना है इसलिए नहीं कि आपके अब्बा हैं, इसलिए कि उनको खुश करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने। जब अल्लाह सामने होता है ना तो फिर इंसान बड़ों के सामने नखरे नहीं करता कि बॉस से लड़ो भाई, आपने कंपनी के लिए बहुत कुछ खिदमात की, एक दफा आपसे आपकी से गलती हो गई, बॉस ने कहा भाई निकल यहां से, मैं तेरा बायकॉट करूंगा, आप चलो जाओ, अड़े तुम्हारे बाप का थोड़ी खाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अच्छा लगता है खुदा, मैं आपको अवार्ड दूंगा, ये गैरतमंद होने की क्या है? क्योंकि बॉस को जो खुश कर रहे हो अल्लाह के लिए थोड़ी, बॉस को भाई पैसों के लिए खुश करता है आदमी यार, बॉस से बना के रखो, तनख्वाह टाइम पे मिलेगी और फ्री फोकट में थोड़ी, आप उसको उसकी कंपनी चला रहे हो, वो भी तो कमा रहा है ना। अरे वो भी कमा रहा है तो वो भी आपको दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे फायदा उठा रहे हैं, किसी का किसी पर एहसान नहीं है। तमीज से चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा जा रहे यहां से, अड़े तड़े करके बात करो आप, वहां ऐसा नहीं होता। और बाप का जो हैसियत है ना, मां और बाप की, वो ये नहीं है कि आपके अब्बा हैं तो अब्बा अच्छे चल रहे थे तो आप भी अच्छे चल रहे थे, अब्बा का मीटर शार्ट हो गया तो आपने दो दफा बर्दाश्त किया, तीसरे दफा में आपने कहा अब्बा मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी की तैसी, ना 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 ना। अब्बा को जो राजी करना है वो अब्बा के लिए नहीं, वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्योंकि अब्बा की भी दो हैसियतें, यानी अब्बा से जो अच्छा सलूक करते हो दो वजह से, इस एक तो इसलिए कि अब्बा हैं, तो ये तो हिंदू भी करता है, इतना नहीं करते जितना मुसलमान करते हैं, लेकिन बहरहाल करते तो रिस्पेक्ट तो देते हैं ना। अंग्रेज भी, मैंने एक अंग्रेज को देखा ऑस्ट्रेलिया में, अपनी बूढ़ी मां को गले मिलके ऐसे खड़ा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, बूढ़ी मां थी ऐसे गले मिल रहा है, मैंने कहा कहां क्या हो रहा है, पता चला कि वो किसी दूसरे मुल्क जा रही है अम्मा, मुझे अच्छा लगा यार, चलो काफिर हैं मगर अपनी मां को इज्जत दे रहे, काफी देर तक अपनी मां से गले मिलके चिपका रहा, वो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, तो वो भी देते हैं भाई, चाहे थोड़ी देर के लिए दे रहा हो, फिर वापसी पे ओल्ड होम में करा दे, हो सकता है ना करा रहा हो, सारे थोड़ी कराते हैं, बहुत से घर में भी रखते हैं अब्बा अम्मा को, लेकिन ये रिस्पेक्ट देने की वजह क्या है, ये क्या है? अम्मा। हम जो मां बाप को इज्जत देते हैं भाई, ये इस गलत फहमी दिमाग से निकाल दो, वो इसलिए नहीं दे रहे कि महज इसलिए कि अब्बा हैं और ये अम्मा हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैही, अल्लाह फरमाते हैं तेरे बाप ने तुझे अपनी रिस्पेक्ट का हुक्म नहीं दिया, मैंने हुक्म दिया तुझे कि अपने बाप की इज्जत कर, और हुक्म नहीं दिया, वसीयत की है, जो हुक्म से बढ़कर चीज है। तो जब अल्लाह की वजह से किसी को इज्जत दी जाती है तो फिर वो कैफियत होती है जो किसकी थी? काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह अनु की थी। बहुत मुश्किल है भाई, बात समझाना बहुत मुश्किल हो गया, तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रही, अगर इतना आसान है तो रिपोर्टें तो वही आ रही हैं, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनकी रिपोर्टें भी कोई इतनी अच्छी कि भाई चलो सुन के इतने अच्छे बन गए कि अब वो वैसे के वैसे ही हैं। तो रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी इसका मतलब बयान समझ में नहीं आ रहा। तो खैर, काब इब्ने मालिक को नबी ने क्या फरमाया? खुशखबरी कबूल करो। तो ऐसा लगता है फौरन जब कहा ना मिन का मिन अम मिन इंदिल्ला, इसका मतलब उनके दिमाग में बस एक चीज सवार हो गई थी कि किसको राजी करना है, अल्लाह को। इसलिए फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से। नबी ने फौरन जवाब, नबी भी गजबनाक नहीं हुए, हम पीरो मुर्शिद होते हाय हाय तलवार आपके लिए नहीं कह रहा। पीरो मुर्शिदीन जो आजकल मार्केट में टोपी ड्रामे चल रहे हैं ना, रूहानियत के नाम पे जितना मर्जी बोलो मगर लोगों ने जाना रूहानी बाबों के पास ही है और तबीयत से उल्लू बना रहे हैं। यार क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, अब तो अहले हदीस भी इस मैदान में आ गए, हालांकि वो नहीं थे पहले, वो भी रुमाल लाल ना ऐसे जैसे मक्का के कोई मुफ्ती आजम बैठे हुए हों। मैंने सऊदी अरब का देखा रूहानी टोपी ड्रामा, सऊदी अरब का मक्का, मैंने कहा ये अरबों को क्या हो गया यार, ये तो अच्छे भले थे, ये तो इनमें तो ये टोपी ड्रामे थे नहीं। देखा वो जुब्बा शुब्बा पहन के लाल रुमाल और खूबसूरत, नहीं जैसे हरम में इमाम हरम बैठे हुए हो कोई या उनका छोटा भाई बैठा हुआ हो। मैंने कहा यार सऊदी अरब में भी टोपी ड्रामे शुरू हो गए। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो पंजाबी बोल रहे थे। मैंने कहा स्टेशन कहां का है पाकिस्तान का, मैं वरना हुलिये से हैरान हो गया। और लोग धड़ाधड़ हुलिये को देखकर कि यार ये तो तौहीद परस्त और ये तो मजारों के खिलाफ और ये तो मक्का मदीना, भाई मक्का मदीना में भी बड़े बड़े उल्लू बैठे हुए हैं, आप क्या समझ रहे हो मक्का जाने पर किसी उल्लू के मक्का जाने पर पाबंदी है, कोई भी जा सकता है। लोग कहते हैं मक्का से, मक्का में बैठ के बात कर रहे हैं मदीना, और पता नहीं मक्का में बैठा हुआ अभी है कि नहीं बैठा हुआ। देखो हम यहां इन्वायरमेंट अगर बनाना चाहें मक्का का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, यहां आप खजूरे ला के रख दें अल-फलाहिया मस्जिद में और जुब्बे कुब्बे पहन लें, थोड़ा सा ऊद की खुशबू छिड़क दें यहां पे और लाल नीली पीली मखमल की जो सऊदीया का लुक आ जाए थोड़ा सा, और मैं भी लाल रुमाल पहन के जुब्बा पहन के बैठ जाऊं, दो चार दफा खजूर का तस्करा भी करूं जो अरब में होता है, खजूर जैतून ज्यादा आ रहा होता है, एक प्याले में यहां रख, एक बर्तन में खजूरें हो इधर कहवा हो और एक क्या कहते हैं गोल्डन कलर की केतली हो गोल्डन कलर की क्या हो, अरबों का यही कल्चर है ना, बड़ी स्टाइलिश किस्म की केतलियां होती हैं उनकी, वो गोल्डन कलर की केतली हो तो हम भी देखने में क्या लगेंगे। यहां मक्का से लाइव बयान हो रहा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो यार लाल रुमाल पहन के वो भी उल्लू बना रहे हैं रूहानियत के नाम पे, तो बड़ा मसला है ये। लेकिन मैं अब इसलिए नहीं बनेगा, इनको बनने दो उल्लू, इनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है बनो तबीयत से। जो इलॉजिकल बात करेगा लोग उसके फैंस होते हैं, लॉजिक की बात करने वाले के लोग फैन नहीं होते, दो चार ही होते हैं। तो हाँ अब दोबारा आते हैं, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब शिर भी खैर यौमिन, खुशखबरी कबूल करो फौरन। क्या कह रहे, हाँ मैं कह रहा था अगर हम होते पीर साहब होते जो मार्केट में चल रहे हैं, मैं अपने मुरीद से कहता पहले कई दिन नाराज रहता, मैं कहता अब मैं खुश हो गया हूं पीर, वो मुरीद कहता कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई इल्हाम हुआ है या अल्लाह भी मुझसे खुश हो गया है, तो पीर को गुस्सा आता, अबे तू मैं जब खुश हो गया तो इसका मतलब अल्लाह भी क्या है खुशी है, यही होता है ना भाई, मैं और अल्लाह में कोई फर्क माज अल्लाह है ही नहीं। पीर साहब खुश हैं तो कौन खुश है, अल्लाह खुश है। पीर साहब नाराज हैं तो कौन नाराज है, अल्लाह नाराज। तो एक साहब ने कहा मैं पीर से बैत हूं, वो वाकई अच्छे पीर हैं, जायज यानी जो वाकई सही पीर हैं वो, यानी पीर का मतलब वाकई सिर्फ इस्लाह करते हैं, लोगों को गुनाहों से बचाते हैं। लेकिन बाज दफा इंसान से इफरात और तफरीत हो जाता है, इल्म की कमी की वजह से भी हो जाता है, बाज दफा वैसे भी इंसान है गलती होती है। तो किसी ऐसी बात का हुक्म दे रहे थे, जायज काम था, लेकिन वालदैन उसके खिलाफ हुक्म दे रहे थे। तो उस मुरीद ने मुझसे राब्ता किया कि मेरे वालिद ये कह रहे हैं और पीर साहब ये कह रहे हैं। मैंने कहा अब्बा की मानो, क्योंकि हलाल और हराम का मसला तो है नहीं। कह रहे पीर साहब नाराज हो रहे हैं, मैंने कहा होने दो भाई नाराज, क्योंकि अल्लाह मियां ने बाप का हक पीर और मुर्शिद से ज्यादा बनाया, मां का हक पीर और मुर्शिद से ज्यादा। तो जायज कामों में बाप को माना जाएगा, पीर साहब को बाप नहीं बनाओ। तो कहने लगे वो रूहानी उस्ताद हैं और अब्बा जिस्मानी हैं, तो रूह का दर्जा जिस्म से ज्यादा है। मैंने कहा अब्बा ना जानते ना और बचपन में ना उठाते तो खाली रूह पकड़ा देते इनको पीर साहब को जाके, सारी टेंशन किसने उठाई है, बाप ने उठाई है। तो बहुत से लोग ये गुलूब करते हैं, कि पीर और मुर्शिद को बाप से ज्यादा प्रोटोकॉल देना शुरू कर देते हैं। तो पीर का भी अपना, जो जाए जो सही पीर हो उसका भी अपना एक एहतराम है जिससे आप दीन सीख रहे हैं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से किसी ने, मुरीद ने पूछा कि हजरत अगर वालिद साहब एक बात का हुक्म दें और पीर साहब दूसरी बात का, तो किसकी बात मानी जाए? हमारे हजरत के जवाब सारे खानदानी हुआ करते थे। मैंने फरमाया वो सही, वो पीर सही है ही नहीं जो अब्बा की मर्जी के खिलाफ हुक्म दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा, जब अल्लाह कह रहा है अब्बा को मानो तो पीर को भी यही चाहिए कि वो, पीर दीन सिखाने के लिए है ना, तो वो तो अब्बा अम्मा की इताअत सिखाएगा, वो तो अब्बा अम्मा का फरमा बरदार आपको बनाएगा। समझते हो? हाँ, नाजायज चीजों में नहीं, नाजायज चीज में नहीं, अब्बा की नहीं माननी उसमें, फिर जो पीर साहब जो शरीयत का हुक्म बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है। तो खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फौरन काब इब्ने मालिक ने पूछा, या रसूलुल्लाह अमिन का अमिन इंदिल्लाह, ये जो खुशखबरी आप दे रहे हैं कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आया, इस दिन की मुबारकबाद जो आप दे रहे हैं ये मुबारकबाद ही आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया ला बल मिन इंदिल्लाह, आप और खुश हुए, फरमाया ना 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 मेरी तरफ से नहीं बल्कि किसकी तरफ से? अल्लाह की। यानी गोया बज़बान हाल बताया कि मैं भी जो इतना खुश हूं इसलिए कि किसकी तरफ से बशारत है? अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह खुश हो गया तो मैं क्यों खुश नहीं हूंगा? समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो काब इब्ने मालिक कहते हैं मैंने ये अजम किया कि मैं, अच्छा अब देखो खानदानी लोग थे ना, वो जो खुशखबरी सुनाने के लिए आ रहा है उसको भी हदिया दे रहे हैं, और जब नबी से तस्दीक हो गई कि अल्लाह ने वही नाजिल की, और ये सूरह तौबा में ये आयते हैं वअलस्सलासतिल्लदीन खुल्लिफू, अल्लाह ने उन तीन की तौबा भी कबूल कर ली, तो काब इब्ने मालिक कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह मेरी तौबा को कुरान का जुज बना देंगे, कुरान का जुज बना देंगे जो हमेशा पढ़ा जाएगा। देखो हजरत काब इब्ने मालिक को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिला है कुरान की तरफ से, यह समझने की चीज है। जो गलती करता है उसको तो प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए ना यार। काश ये बातें समझ में आ जाएं यार, आज पूरा मुआशरे के फॉल्ट ही यही है, मुआशरे में फॉल्ट ही यही चल रहा है। मार्केट में आप किसी को बोल दो ना मैंने गलत किया है, वो समझेगा अगर मैंने मान लिया ना मैंने गलत किया है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये समझा जाएगा कि मैं क्या करता हूं, गलत करता हूं, लिहाजा मेरी किसी बात पर आइंदा एतमाद खत्म हो जाएगा, लिहाजा आप उसको सही करने की कोशिश में लग जाता है इंसान। बॉस अपने मुलाजिम से बोल दे कि तुमने गलत किया, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि मान लिया तो मतलब क्या है यार, हम तो फिर गलत आदमी, हम तो गलत भी करते हैं। बॉस ने गलत किया, किसी ने कहा कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, वो मान लेगा मैंने गलत किया, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो समझेगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो फिर मेरे एतमाद खत्म हो जाएगा, एतमाद खत्म हो जाएगा तो वो कहेंगे तो बंदा ही ठीक नहीं है, बंदा ही ठीक नहीं है तो मेरी कोई बात, फिर तो हर बात ही गलत होगी। तो वो कहता है नहीं मैंने गलत नहीं किया। और मियां बीवी का तो सुबह शाम सेटअप ही यही है, शौहर बीवी को बोले तुमने गलत किया, मान लेगी? हो ही नहीं सकता। मैं गलत, और बीवी शोहर को बोले तुमने गलत किया है, वो पहले से एतराफ करके बैठा हुआ होता है मैंने कभी सही भी किया है, यानी मतलब वो भी नहीं मानता, पहले मैंने सही कहा था अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं अपना बयान, वो भी नहीं मानेगा। और हकीकत है नहीं मानते, चेंज नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं, वाकई नहीं मानते। हमारे पास केस आते रहते हैं ना, अपनी गलती कमबख्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मानना तो दूर की बात, मानना तो दूर की बात। तो देखो यहां हजरत काब इब्ने मालिक से गलती हुई, प्रोटोकॉल इतना मिला कि कुरान में उनके लिए आयतें उतर गईं कि तुम तीन की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है, ऐसा इतनी इज्जत, तीन सारे जानते थे यही तीन है, कितना खुश होंगे हमेशा तरावी में कयामत तक हमारा नाम लिया जा, हमारा तज़किरा होता रहेगा हमेशा, कितना खुश हुए होंगे वो। ये इतना प्रोटोकॉल गलती करने की वजह से नहीं मिला, गलती तस्लीम करने पर मिला है कि गलती की जो सजा है उसको क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, कबूल किया जा रहा है। इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताउन, ए बनी आदम अल्लाह फरमाते हैं तुम में से हर शख्स गलती करता है, वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, सबसे बेहतर गलती करने वाले वो हैं जो तोबा कर लें। ना तो आप ऐसे हो सकते हैं कि आपसे कभी गलती ना हो। कितने बड़े बड़े YouTube पे मैं दावे लोगों के सुनता हूं, मैं कहता हूं इनको यार हम किसी बड़े आलिम से इख्तलाफ करते हैं ना तो जबान लुड़खड़ा रही होती है कि कुछ आलिम की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। अगले सोचेंगे तू है कल का बच्चा, तू हमसे इख्तलाफ कर रहा है। आपने देखो कि मैं 10 दफा उस बात को रिपीट, भाई बाज उलमा ये कहते हैं, बल्कि हमारे हजरत फरमाए करते थे किसी बड़े आलिम से इख्तलाफ करना हो तो अपना नाम ना लो, किसी दूसरे आलिम का नाम लेके कहो कि वो इख्तलाफ करते हैं और उनके ये दलाइल हैं। अपने आप को एक्सपोज करना ना कि उनकी राय ये है मेरी राय ये, भाई अदब तमीज कहां गया, भाई अदब कहां गया। आपसे बड़े बड़े अल्लामे मौजूद हैं, देखो दुनिया में भी ऐसा होता है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, हार्ट का सर्जन बैठा हुआ है जो आँख कान में बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर लिए, 80 साल का हो गया, बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके पास, और एक MBBS 4 साल किया हुआ। अब कोई बंदा आता है हार्ट के बारे में पूछता है, ये बोलना शुरू कर दे, उसको गुस्सा आएगा ना, भाई तू कल का बच्चा है, तेरी तो सीखने की उम्र है, तू हमसे पूछ। तो अदब तमीज का तकाजा यह है कि बड़ा बैठा हुआ हो तो छोटा क्या करता है, खामोश। सर जो खानदानी लोग हैं वो कहते हैं भाई सर से पूछिए आप, बल्कि खुद भी उन्हीं से पूछता रहेगा, और अगर दलाई से साबित हो जाए कि सर की राय इस बारे में गलत है तो वो किसी दूसरे बड़े डॉक्टर के कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा, अपनी राय किसी बड़े के सामने पेश करेगा, वो बड़ा बताएगा कि ये इनकी राय क्या है सही नहीं, तो उन्हीं के नाम लेके बयान करेगा। हर पागल से पागल उठ के बड़े बड़े उलमा के खिलाफ ऐसे क्लिप बना रहा है, मेरी राय मेरी राय, वो तू है कौन यार, तेरी राय तेरी हैसियत क्या है। ये तमीज मार की बाप मां बाप सिखाते हैं बचपन में ये चीजें, एक दफा नहीं सिखाई ना तो बस गए, फिर नहीं सीखता इंसान, कोई है वो अजब ही खत्म हो गया बिल्कुल। तो क्या बात चल रही थी, तो भाई गलती जो है ना, गलती ये होती है सबसे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आराम से भाई ये आपने मुफ्ती साहब ये गलती की है, ये मुफ्ती साहब को चाहिए आराम से सुने, अच्छा इस पर गौर करते हैं, चलो ठीक है अब इसको हम थोड़ा सा अगले बयान में सही कर देंगे, खत्म हो गई बात, नहीं आ रही क्या हो गया भाई। तो इसी तरह घर में अगर बीवी आपसे कह दिया करे कि देखें आपने जो ये किया गलत किया, सुनो एक दफा तसल्ली से बैठ के कि गलत कह रही है सही कह रही है, एकदम तैश में नहीं आ जाया करो। जो जरूरत से ज्यादा गैरतमंद बनने की कोशिश करता है ना बीवी, उसको एक दफा बता दे तुम्हारी मां ने ये कहा तो तलवारें निकाल लेगा, ओए मेरी मां के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रही है, भाई तसल्ली से सुनो, आपकी अम्मा से भी गलती हो सकती आराम से। जी बेगम फरमाई, अब वो कथा सुना रही है आपकी अम्मा ने ये किया आपकी अम्मा ने यूं किया, आराम से सुन के भड़ास निकाल लें तो उसको, अच्छा मैं इस पे सोचूंगा, समझ रहे हो। फिर आपके खिलाफ अगर उसने कंप्लेन की आप यूं आप ये नहीं करते, आप ख्याल नहीं कर रहे बच्चों की तालीम का, आपको फिक्र नहीं है, आपको घर में टाइम नहीं दे रहे, आप सुनो आराम से, हो सकता है सही कह रही हो। और ये मर्ज उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको बाहर इज्जत ज्यादा मिल रही होती है। अरे आप किसी कंपनी में ऑफिसर हो ना तो सारे एम्प्लॉय आपके दाएं बाएं घूम रहे हैं, आपको बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो आपको ये वहम हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं आ रही बात समझ में, समझ रहे हो। खुदा की कसम उठाकर एक बात कहूं ना तो गलत नहीं होगी, इंसान को तबाह तारीफें करती हैं, बुराइयां नहीं करती, तारीफ तबाह करती है। तारीफ ऐसी चीज है, जब इंसान अपनी तारीफ सुनता है तो खुशफहमी में आता है कि वाकई ऐसा ही है जैसा लोग कह रहे हैं। झूठ तो वैसे भी किसी और के बारे में भी सुनो 3-4 दफा तो यकीन होने लगता है, और अपने बारे में तो पहली दफा में भी सुनो ना, हालांकि यकीन होगा कि ये झूठ बोल रहा है। मेरी जिंदगी में एक आदमी ऐसा मिला है जिसने जिसकी किसी ने झूठी तारीफ की थी और उसने कहा ये ऑफिसर झूठ बोल रहा है। वो एक पीर के पास गया, वो बड़ा होशियार लड़का है, पीर के पास गए किसी रूहानी टोपी ड्रामे के पास ना, रूहानी के साथ टोपी ड्रामा का लफ्ज अटैच कर दें हमेशा के लिए, जैसे होता है ना हजरत दामत बरकातहुम, हजरत हम पैगंबरों के साथ अलैहिस्सलाम लगाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ रजी अल्लाह अनु लाजमी हिस्सा है ना, क्या हो गया भाई फला रजी अल्लाह अनु फला अलैहिस्सलाम, तो इसी तरह रूहानी जब आएगा तो टोपी ड्रामा, یہ رضی اللہ عنہ جیسے ہم نے صحابہ کے ساتھ لگا دیا, پیغمبروں کے ساتھ کیا لگا دیا علیہ السلام, بزرگوں کے ساتھ دامت برکاتہم, تو روحانیوں کے ساتھ جب بھی بیان کیا کریں مفتی صاحب ایک روحانی پیر ہے ٹوپی ڈرامہ, یہ ایسے جیسے ایک فرض تھا جو آپ سے رہ گیا ہے. ان کو بالکل وہ کریں کیونکہ ان کی بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے معاشرے میں, اور جو جھوٹ عزت ہے, الو بنانے پر کسی کو عزت ملتی ہے, لیکن الو بنا کے لوگ عزت, چوروں کو لوگ چور سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں جاتے. ان روحانی ٹوپی ڈراموں میں عاشقان رسول جا رہے ہیں, جو اسلام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں. دیکھو چور سے تو چور متاثر ہوگا, اسمگلر سے اسمگلر متاثر ہوگا, لیکن دیندار لوگ تو متاثر نہیں ہوتے نا. لیکن جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا ان کے پیچھے کون جاتا ہے؟ تبلیغ والے جائیں گے ان کے پیچھے. ہاں, جتنا زیادہ تبلیغ میں وقت لگا ہوگا اتنا زیادہ الو بنانا اس کو آسان ہے روحانی ٹوپی ڈرامے کے لیے. دامت برکاتہم کو میں نے ٹوپی ڈرامہ کر دیا ہے روحانی کے ساتھ. دامت کوئی روحانی بولے ہمیں ٹوپی ڈرامہ کیوں کر, ہمارے یہاں دامت برکاتہم کا ایک فارم یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی دوسری فارم ہے. تو یہ تبلیغ والوں کو بیوقوف بناتے ہیں, یہ عاشقان رسول کو جو نبی سے عشق کرتے ہیں نا ان کو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں نبی کا نام استعمال کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, صرف انگلی رہ جاتی ہے, میں مضمون بھول جاتا ہوں. ہیں ایک آدمی کو بولنے دیں. ہاں وہ لڑکا گیا روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس, اس روحانی ٹوپی ڈرامے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت ہوشیار ہے, تو ان کا ہر آدمی کو شکار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو وہ دوسرا جو مکھنچو اس کو لے کر گیا تھا نا, وہ تو الو بن گیا تھا. تو اس ٹوپی ڈرامے نے روحانی بھی کہنے کی ضرورت نہیں, صرف ٹوپی ڈرامہ ہی رکھ لو. جب ٹوپی ڈرامے کا لفظ علل اطلاق کہا جائے گا تو سمجھ لو کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, روحانی کا, صحیح ہے نا. اور اگر کسی اور ٹوپی ڈرامے کا ہو رہا ہے تو اس کا نام ساتھ میں لگانا ضروری, لیکن جب مطلق ٹوپی ڈرامہ بولا جائے گا تو کون مراد ہوگا؟ روحانی علاج والا. تو وہ ٹوپی ڈرامے کے پاس گیا, ٹوپی ڈرامے نے اس مکھنچو کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ تو الٹی الٹی باتیں کی. تو یہ جو چالاک تھا نا, ٹوپی ڈرامے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چالاک کیا ہے, یہ ہوشیار ہے, اس کو شیشے میں اتارو. اور داڑھی بھی تھی اس کی ماشاءاللہ. تو اس مکھنچو سے کہا کہ یہ جو آیا ہے نا نوجوان, یہ اتنا نیک ہے, میں نے اس کے باطن کو جھانک لیا ہے, یہ اتنا نیک ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آئے گی. تو وہ لڑکا جس کے بارے میں ایک ٹوپی ڈرامے نے یہ تذکرہ کیا, وہ کہہ رہا ہے میں اتنی زور سے ہنسا نا, کہہ رہا ہے مجھے اپنے اعمال معلوم تھے کہ میری حرکتیں کیا ہیں. پھر مجھے آ کے سنا رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے اس سے اندازہ ہوا ایک نمبر کا کیا یہ فراڈی ہے. کہہ رہے ہم کی تو مجھے انسان اپنے بارے میں جا کہہ رہے مجھے تو یار میری تو بخشش ہو جائے بڑی بات ہے, لیکن یہ اچھے ہونے کی علامت ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں تذکرہ کیا اور آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے کیونکہ آپ اپنی حیثیت جانتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کے اندر کوئی نیکی ہونا ہو یہ بہرحال یہ ایک نیکی, ورنہ لوگ چور بھی ہوگا نا متاثر ہو جائے گا, یار اتنے بڑے ٹوپی ڈرامے, یار معمولی ڈرامہ نہیں ہے, اتنے بزرگ نکل ہی نہیں رہا منہ سے, جھوٹ موٹ کبھی نہیں نکل رہا. اتنے بڑے ٹوپی ڈرامے نے میرے بارے میں ایسے کمنٹس کیے ہیں, کچھ تو ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسان اپنے بارے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, اپریشیٹ کرنے کے لیے تعریف کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے صحابہ کے منہ پہ بھی تعریف کی ہے, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا تمہارے منہ پہ تعریف کرے خاک پھینک دو, وہ جو چاپلوسی کے لیے کر رہا ہو, مکھن لگانے کے لیے کر رہا ہو, آپ کو چڑھانے کے لیے نا. یہ ایسے مکھن والے بھی لوگ دنیا میں بہت ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا تو فرض ہے کہ کرے. آپ کو چاہیے آپ دیکھیں کہ واقعی یہ ہے بھی یا نہیں ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں ہے تو متاثر ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. آپ کے خیر خواہ وہ ہیں جو آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور آپ کے اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو وہ بھی بیان کرتے ہیں, لیکن عزت کے ساتھ, آپ کی خیرخواہی کے جذبے سے, آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں. تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا, اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا؟ इसलिए उलमा कहते हैं बाज़ दफ़ा इंसान गुनाह करके ऐसे मकामात तक पहुंच जाता है जहां तक वो नहीं पहुंचता जिसने गुनाह ना किए। अब ये अजीब बात है ना, ये बातें बताई नहीं जाती। क्यों बताई नहीं जाती? कि इस बहाने लोग गुनाह ना करना शुरू कर दें। तो असल में वो गुनाह की वजह से नहीं पहुंचता, गुनाह से तौबा उसने ऐसी खानदानी की होती है कि गुनाह करने से पहले जो उसका ताल्लुक था ना अल्लाह से, गुनाह के बाद जब तौबा की है तो पहले से भी ज्यादा मजबूत ताल्लुक हो गया। जैसे हदीस में आता है एक औरत ने जिना किया, शादीशुदा औरत ने, नबी के पास आई, सही मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हुआ, रजम की सजा जारी करें। चार दफा आई, आपने हुक्म दिया पत्थरों से मार के हलाक किया जाए, तो पत्थरों से मार के उसको हलाक किया गया। आपने नमाज जनाजा पढ़ी, हजरत उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह एक जानी औरत का जनाजा पढ़ाते हैं। आपने फरमाया लकद ताबत तौबत लव कुसिमत सबईन मिन अहलिल मदीनती लवसियतहुम, ऐसी खानदानी तौबा की है कि अगर मदीना के 70 गुनाहगारों में डिवाइड कर दी जाए तो हर एक की बख्शिश हो जाए। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि उनसे जिना ना होता तो इतना बड़ा मकाम ना मिलता। तो यहां जिना नहीं है, जिना से तौबा, जिना की वजह से मकाम नहीं मिला, जिना से तौबा ऐसी की है कि ऐसी तौबा कोई करता नहीं है कि अपने आप को पत्थरों से हलाक करवाने के लिए पेश कर दिया। ये बड़ी बात है ना कि इतना आखिरत का खौफ कि मुझे दुनिया में सजा चाहिए आखिरत में नहीं चाहिए, हालांकि पता भी है कि तौबा कर लोगे तो माफ हो जाएगा, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही, नहीं भी सजा चाहिए। तो इससे पता चलता है भाई गलती, कोशिश करो गलती ना हो। देखो इस उम्मीद पे गलती करना कि मैं तौबा कर लूंगा बाद में, ये बहुत बड़ी हमाकत है। ये ऐसे है जैसे अपने आप को जख्मी करो इस उम्मीद पे कि बाद में इलाज कर लूंगा। कोरोना के मरीज से गले मिल रहे हैं, झपिया पा रहे हैं कि हो जाएगा तो फिर वेंटिलेशन का इंतजाम कर लूंगा, तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना, हो गया ना चाहते हुए भी हो गया, फिर है तौबा। तो काब इब्ने मालिक ने यह सोच के थोड़ी खज़वे तबूक से पीछे रह गए थे कि बाद में तौबा करूंगा, बल्कि वो तो शैतान ने वरगलाया और खेतियां पकी हुई थी, पूरे साल बाग पे मेहनत की थी, गर्मी थी, अब खजूर खाने का वक्त आया, सारे साल की मेहनत जाया होते हुए नजर आ रही है कि तबूक में चले गए तो, और फिर ये भी सोच रहे हम तो हर जंग में शरीक रहे हैं तो इसमें नहीं गए तो क्या हो गया। इस तरह से शैतान ने क्या किया, रोक लिया। और शैतान को पता होता ना कि ऐसी खानदानी तौबा करेंगे, वो कहता भाई आप जाएं। वो क्या कहता बोलो भाई, शैतान ने कसम उठाई थी ना अल्लाह से कि इनसे नाफरमानी करा के छोड़ूंगा, तो अल्लाह ने भी क्या फरमाया, दूसरी रिवायत में आता है कि जो तौबा करेगा मैं उसको माफ कर दूंगा। तो शैतान अपना काम करा रहा है, आप अपना काम करो। शैतान अगर पिछाड़ देता है तो तौबा करके अल्लाह को मनाओ दोबारा। तो काब इब्ने मालिक की जो को इतना जो इज्जत मिली, इसलिए कि गलती का एतराफ किया, जो सजा मिल रही है उसको अल्लाह का हुक्म समझ के बर्दाश्त किया, इतना बड़ा मकाम मिल गया उनको। तो हां, अब जो मैं बात कर रहा था, जब तौबा कबूल हुई है, तौबा जब काब इब्ने मालिक की कबूल हुई, खबरी सुनाई गई है, तो खुशखबरी देने वाले को भी क्या किया, गिफ्ट दिया ना। तो अब जब नबी ने बताया कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली है, तो पहले तो तसल्ली की कि अल्लाह ने की है या आपने माफ की है, तो बताया अल्लाह ने, तो फौरन अगला जुमला पता है क्या था, या रसूल अल्लाह इस माल की वजह से मैं जिहाद से पीछे रह गया तो ये सारा माल सदका। ये तौबा भी क्या है, तभी तो यार ये सहाबा थे बड़े खानदानी। अरब को आप जो उस दौर में अरब थे ना, बास मुअर्रिखीन उनका बहुत ही भयानक नक्शा खींचते हैं कि बड़े ऐसे थे, ऐसा नहीं है भाई, उनमें कुछ बुराइयां जरूर थी मगर ब्लड क्या था, क्योंकि खानदानी लोगों में अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा है कि कल क़यादत इनके हाथ में आएगी। बनी इसराइल को में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तो भेजा, मगर बनी इसराइल को पूरी दुनिया की क़यादत अल्लाह देना चाहते ही नहीं थे, और मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी भी नहीं थे, उनके बाद भी नबियों का सिलसिला जारी होना था, तो अल्लाह ने बनी इसराइल दे दी। कैसे नालायक थे ना, कहीं से भी खानदानी वानदानी चीजें थी उनके अंदर। चंद एक को छोड़कर, चंद एक की तो अल्लाह ने तारीफ की है, लेकिन बनी इसराइल में अक्सरियत क्या थी, जिस बात का हुक्म दो ये हर बात में, और ये सहावत तो थी नहीं। लेकिन इधर सहाबा को देखो,
कैसी बर्दाश्त, कैसा बर्दाश्त किया उन्होंने। वो ये कह सकते थे कि अगर मैंने गुनाह किया था, पहली बात तो ये कि मैं हर जंग में शरीक रहा हूं, तो ये गलती हो गई तो बस मैंने दो रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा कर ली तो मामला क्या हो गया, क्योंकि मसला तो यही है कि तौबा कर लो तो अल्लाह क्या कर देता है, माफ। हमारी तो ऐसे ही तौबा होती है, कोई गलती हुई, बल्कि इतना भी नहीं, तकल्लुफ, अस्तग़फिरुल्लाह, बस चलो सब क्या हो गया माफ। इतना भी कमबख्त करने के लिए तैयार नहीं है, चलो यार इतना भी कर लेना, ये भी नहीं करते। अल्लाह तो इसमें भी माफ कर देता है कि भाई आंदा नहीं कर, यहां अब तक भी नहीं आ रहे। तो पहली बात, काब इब्ने मालिक कह सकते थे कि सारी जिंदगी जिहाद करता रहा, एक गलती हुई, और वैसे तो गलती सारी जिंदगी भी जिहाद ना किया हो, हर दफा ही इंकार किया हो, तो जितने भी बड़े गुनाह हो, एक तौबा सारे गुनाहों को क्या कर देती है, माफ। तो मसला तो यही है, उलमा से सुना है, मसला तो यही है, बस दो रगत भी नहीं पढ़ने की जरूरत, तौबा कर लो, क्या हो जाएगा, माफ। और वाकई माफ हो जाता है, अल्लाह का कानून भी यही है कि आइंदा ना करो, यानी अजम करो आइंदा नहीं करूंगा, ना 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 ना, इतना नहीं, बल्कि सारी जंगों में शरीक, और उसके बाद भी फिर 40 दिन जो बायकॉट हुआ उसमें जो टेंशन हुई है, कह सकते थे कि चलो मैंने तौबा भी की और दुनिया में उसकी गुनाह की सजा भी अल्लाह ने दे दी, जो 40 दिन में टेंशन में कि नबी को सलाम कर रहा हूं तो सलाम का जवाब नहीं दे रहे, मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तो ये जो टेंशन 40 दिन मैंने गुजारे, और फिर एक बादशाह ने मुझे लेटर भेजा, उसको मैंने जला दिया, ये बड़ी आजमाइशों से गुजर गया, अब तो मैं दूध का धुला हुआ बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका हूं, अब मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ना ना। खानदानी लोग भाई, माल से मोहब्बत जो सहाबा की गलतियों को हाईलाइट करता है ना, वो समझ रहा होता है कि वो अपने ऊपर कयास कर रहा होता है कि जैसे हमसे होती है तो इसी तरह उनसे, उनकी गलतियों में और हमारी गलतियों में जमीन और आसमान का फर्क है। उनकी गलतियां ऐसे होती हैं जैसे आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगला के जन्नत का दरख्त खिला दिया, इसका यह मतलब तो नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह के हुक्म की वैल्यू नहीं है, यह मतलब थोड़ी है। शैतान इंसान को कुछ ना कुछ वो घुमाता रहता है, तो इंसान घूम जाता है। हम जो गलती करते हैं तो अल्लाह का खौफ हमारे दिल से निकल चुका होता है, अल्लाह की अजमत हमारे दिल से निकल चुकी होती है। तो सहाबा के दिल से अगर अल्लाह की अजमत निकली होती तो इतनी कुर्बानियां जो उन्होंने दी हैं वो कुर्बानियां ना देते। देखो हजरत अबू सुफियान को शैतान ने रोका इस्लाम कबूल करने से, ये बात आज नेगेटिव उसमें बयान की जाती है वे में कि इतनी देर से इस्लाम कबूल किया जब सब कुछ हल हो चुका था। ओ भाई, शैतान ने उनको रोका है, वरगलाया, लेकिन जब कबूल किया उन्होंने इस्लाम, तो फिर उस इस्लाम लाने के बाद की कुर्बानियां देखो उनकी। उनको यह एहसास था कि मैं देर से मुसलमान हुआ हूं तो अब मुझे इसकी तलाफी करनी है, मैदान जिहाद में निकल गए, जिंदगी जिहाद में गुजारी हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला ने। हालांकि वो तो अरब के सरदार थे, वो तो मदीना में बैठ के खाते, उनको तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता। उन्होंने कहा भाई ये मैंने गलत किया, मैं देर से मुसलमान हुआ, अब इसकी तलाफी कैसे होगी, तलवार लेके मैदानों में निकल गए, और अपनी जौजा हजरत हिंदा को भी लेकर गए मैदान जिहाद में कि मैं अगर मैदान में भाग गया तो मेरी बीवी मुझे आर दिलाएगी। ये कुर्बानी जिसने दी हो उसके बारे में नेगेटिव क्लिप बना बना के उनकी खामियों को हाईलाइट करना, ये बदबख्ती की बात है या नहीं है। तो खैर, हजरत काब इब्ने मालिक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस माल की वजह से मैं पीछे रहा हूं। ये तावील भी नहीं कर रहे कि नहीं एक्चुअली वो माल की वजह से तो नहीं, वो तो एक वैसे ही मेरा बिजनेस तो है, लेकिन मैंने सोचा कि इतने लोग हैं तबूक में जाने वाले, मैं नहीं गया तो क्या होगा। ना ना ना, पूरी अपनी गलती का इकरार कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह इस माल ने मुझे रोका है तो अब इसकी तलाफी ये है कि इस माल की ऐसी की। बोलो भाई, ये मेरी अपनी जबान है ना, अभी आप हदीस गूगल में ऐसी की तैसी लिख के तलाश कर रहे हैं हदीस नंबर, कुछ हमारे अपने तर्जमे भी होते हैं जो उसकी अक्कासी कर रहे होते हैं कि उनकी नीयत यही थी। तो इस माल की क्या ऐसी की, पूरा माल सदका, कोई कर सकता है यार, हैं? बोलते क्यों नहीं, या रसूलल्लाह पूरा माल सदका, जहां चाहे खर्च करें। यहां भी हम पीर होते, हम कहते ले आ भाई, क्या कर ले भाई, ले आ। आज तो बड़ा जोश में, मुरीद ने आज जेब में हाथ डाला है और जोश में भी है, ले आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना ना, क्योंकि आप जानते थे ये मुखलिस सहाबी हैं,
इनके बीवी बच्चे भी हैं, चलो एक इनसे कोताही हुई थी तो अब क्या है, ये तो अपने लिहाज से सही कर रहे हैं मगर मैंने अपने साथियों का भी ख्याल कर। फरमाया नाना पूरा माल नहीं, फिर पता नहीं आधा माल किया या वन थर्ड किया या क्या किया, मुझे इस वक्त हदीस पूरी जहन में नहीं, मना किया उनको कि नहीं पूरे माल नहीं सदका करो, कुछ हिस्सा माल का कुछ हिस्सा उनसे सदका करवाया तो बाकी रहने दो इस्तेमाल करो। तो भाई क्या बात थी, कहां से शुरू हुई थी ये बात सारी, यहां आई कहां से, वाकया कौन सा सुना रहा था, डायरी रख के बैठा करें मेरे सामने, कहां से बात शुरू हुई थी। अम नजअलुल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन है, शख्सियत परस्ती, हां इस पर बात चल रही थी कि इस्लाम में शख्सियत बराए शख्सियत नहीं है, असल कौन है, अल्लाह, उसकी रिजा मकसूद हकीकी है, समझ रहे हो। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अम नजअलुल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन, जो मेरी मान के चलेगा जो नहीं मान के चलेगा, तुम क्या समझते हो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ मैं बता रहा था कि दो किस्म के नजरियात थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, कुछ तो ये थे जो कहते थे कि हिसाबो किताब सिरे से है ही नहीं, और कुछ ये कहते थे कि हमारे पास माल असबाब हैं, हम तरक्की याफ्ता हैं, हमारे पास इल्म है, ये सब हुकूमत हमारे पास है, तो इसका मतलब अल्लाह हमसे खुश है, लिहाजा आखिरत में भी हम ज्यादा अच्छी कंडीशन में होंगे। ये दोनों नजरिए आज भी पूरी तरह मौजूद, लोग गोरों की तरक्की से मुतासिर होते कि नहीं होते, यार असल तो वो मुसलमान वो हैं, असल मुस्लिम तो वो हैं, इंसानियत के असल खैरख्वाह तो वो हैं, जो गैर मुस्लिमों की बड़ी तारीफें कर रहे हो। लिहाजा मैंने खुद सुना है लोगों को, असल तो ये साइंसदान जाएंगे जन्नत में जिन्होंने इंसानियत की इतनी खिदमत की, न्यूटन जाएगा, आइंस्टाइन जाएगा, बड़ी खिदमत की इंसानियत की इन्होंने, बल्ब ईजाद किया था ना एडिसन ने, एडिसन ही था ना, कोई और तो नहीं था भाई, पता ही नहीं एडिसन, वो बैठे हैं मास्टर साहब, एडिसन ने बल्ब ईजाद किया, कितने लोगों को फायदा पहुंचाया, तो इनकी दुनिया में भी इज्जत है तो आखिरत में भी इज्जत होगी। तो अल्लाह ने इससे भी इन आयतों में रद्द किया है कि दुनिया की तरक्की या दुनिया में माल व असबाब या खुशियां या इज्जत, चाहे वो इंसानियत की खिदमत की बेस पे मिली हो या किसी और बेस पे मिली हो, ये तमाम तर चीजें इसकी अलामत नहीं है कि आखिरत में भी तुम आगे होगे। अल्लाह ने फरमाया कि इन लकुम फीही लमा तखय्यरून, किस किताब में तुमने पढ़ लिया कि जो तुम दुनिया चाहते हो ये आखिरत में भी तुम्हें मिलेगी, ये किस किताब में पढ़ लिया। अब यहां भी क्यों है, क्योंकि अल्लाह सबसे पहले किसको मानता है, अगर एडिसन ने बल्ब ईजाद किया था अल्लाह को खुश करने के लिए तो आखिरत बना ली उसने, समझ में नहीं आ रही बात। न्यूटन जो इतने दिन तक दरख्त के नीचे, जब तरबूज गिरा था दरख्त के नीचे तो तरबूज नहीं गिरा था, आम गिरा था, क्या गिरा था, सेब जो न्यूटन के सर पे आगे गिरा और उसने ये सोचा कि ग्रेविटी भी कोई चीज होती है, यार ये न्यूटन भी अजीब चीज था यार न्यूटन मुझे मिला ना कयामत के दिन, मैं जरा साइड पे छाऊं, मैं आपसे दो मिनट का काम है, आप प्लीज मुझे ये बताएं कि इतने दिनों से आपको समझ में नहीं आया, सेब जब आपके सर पे गिरा है भाई, ये तो कब से क्या क्या चीजें हैं गिर रही हैं, कुछ भी फेंको कहां जाता है, जमीन पे गिरता है ना। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, आपको समझ में आया कि ये जमीन क्या है, बहुत अच्छी एक थ्योरी थी उसकी, बहुत जबरदस्त थ्योरी थी जिससे इंसानियत को बहुत फायदा हुआ कि भाई जिस चीज में जितना मास ज्यादा होगा, हजम ज्यादा होगा, उसमें कशिश उतनी ही, यही है ना नजरिया, उतनी ज्यादा होगी। वो चांद चूंकि छोटा है तो वो जमीन के गिर्द घूम रहा है, सूरज जमीन से भी बड़ा है तो जमीन को सूरज ने अपने जो जितना बड़ा फंटर है ना कायनात में फंटरगिरी के उस कायनात चल ही फंटरगिरी के उसूल पे रही है, जितना बड़ा फंटर है वो उतना ज्यादा खींच रहा है। तो ये उसूल बनाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन बताने वाला कौन है, न्यूटन। याद रखो साइंसदान उसूल बनाते नहीं है, बताते हैं, बनाए किसने, तो जो बनाने वाला है उसको तो लिफ्टी नहीं कराते, जो बताने वाला है उसको तो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अजीब बात है या नहीं है।
ये मेडिसिन जितनी डॉक्टर बना रहे हैं, बना थोड़ी रहे हैं, बनाई तो अल्लाह ने है। डॉक्टर तो बता रहे हैं कि यार इस जड़ी बूटी में ये अल्लाह ने रखा है, इस जड़ी बूटी में ये, उसको तो इतना प्रोटोकॉल दिए थे डॉक्टर को, जो बनाने वाला है उसको क्या मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अल्लाह क्यों बख्शेगा क्यामत के दिन? नहीं यार समझ में मेरा ख्याल है, क्यों बख्शेगा अल्लाह क्यामत? बोले जब जिसने बनाई है उसको तो लिफ्ट ही नहीं। तो ये जो ग्रेविटी का उसूल है ये अल्लाह ने बनाया है, न्यूटन ने बताया है। अब न्यूटन अगर उस अल्लाह को मानेगा, और इस ग्रेविटी की वजह से हम जमीन में तमीज से जिंदगी गुजार रहे हैं, ग्रेविटी ना होती तो आप अभी दरमियान में मुअल्लक लटके हुए होते, ये वीडियो उल्टी होती, मैं अपने आप को पूरा बयान अपने आप को सीधा करने में लगा देता हूं, एक घंटा मुझे अपने आप को सीधा करने में लगता कि पहले सीधा तो हो जाऊं फिर खूंटे से किसी चीज के बांधता अपने आप को, कितनी टेंशन होती ना। सूरह मुल्क में अल्लाह ने क्या फरमाया, जअल लकुमुल अर्ज़ा ज़लूलन, अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए जलील कर दिया, मुसख्खर कर दिया। ये मुसख्खर में सब चीजें आती हैं, ग्रेविटी इतनी रखी है कि ना वेट बहुत ज्यादा और ना कम, एक हिसाब हो किताब से हर चीज एक तमीज। जमीन अगर अल्लाह 10 गुना बड़ी बना देते तो फिर ये जो मेरा बयान एक घंटे में खत्म तो हो जाता मगर उठने में 40 घंटे लगते, यही होता ना, बैठे ही जमीन से चिपके हुए होते, उठा ही नहीं जा रहा होता हमसे, आप लोग बयान सुनने आना छोड़ देते, इसलिए कि जब घर से उठने की कोशिश करते तो इतनी मुसीबत, जैसे 40 किलो का वेट रखा हुआ है आपने अपने ऊपर, फिर चलने में एक एक कदम उठाना कछुए की तरह चलते, फिर यहां आके बैठते तो उठते नहीं, पुलिस आती उठाने के लिए और पुलिस तो आपसे भी ज्यादा लेट आती क्या ख्याल? तो अल्लाह ने हर चीज को एक हिसाब से, वो ग्रेविटी का भी जो अल्लाह ने उसूल बनाया, वो सारी चीजें अल्लाह ने अपने हिसाब से बनाई है। साइंसदान तो हमें बता रहे हैं, तो बताने वालों से तो इतना इश्क कि यार ये कैसे जहन्नम में चले जाएंगे, और जिसने बनाया है साइंसदान उसको लिफ्ट कराने के लिए तैयार है ही नहीं है। तो अल्लाह कहेगा पहले तो मैं हूं जिसने कायनात बनाई है, समझते नहीं हो कि नहीं? देखो एक हकीम आपको दवा देता है, एक जड़ी बूटी खिलाता है, आप एकदम ठीक हो जाते हो, आप हकीम को गले लगा रहे हो यार, ओ भाई सबसे पहले तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने उस जड़ी बूटी को पैदा किया और फिर गाइड भी किया, जानवरों के जरिए गाइड करता है अल्लाह कि देखो इस बीमारी में जानवर ये जड़ी बूटी खा रहे हैं, इससे डॉक्टरों को पता चलता है कि ये चीजें क्या हैं, ये खाने की चीज है, इसी से रिसर्च होती है। तो अल्लाह गाइड भी करता है कि देखो बंदर इस मौके पे क्या खा रहा है, ये सारे साइंसदानों ने तो जानवरों को ज्यादातर दवाएं दे के जाती हैं। तो इसलिए अल्लाह के यहां सबसे पहले कौन है भाई? अल्लाह। सेवर तो खैर एडिसन ने इजाद नहीं किया, तो चाइना ने इजाद किया है। अब आप चाह रहे हो कि चाइना वाले बख्शे जाएं? चाइना वाले, इनमें कोई चीज नजर आती है बख्शिश की? की हरकतें देखो ना चाइनीज की, कुत्ते खा रहे हैं और जुल्म कैसा करते हैं। तो ये सब अपने मफाद के लिए हो रहा है, मैं नहीं कहता न्यूटन ने अपने फायदे के लिए, इंसानियत के लिए किया होगा। तो अगर इस अल्लाह को मानता था तो अल्लाह उसकी बख्शिश करे, नहीं मानता था तो भाई अल्लाह ने हम पे पाबंदी लगाई हुई है कि बख्शिश की दुआ नहीं करनी। तो अल्लाह ने अगर पाबंदियां ना लगाई होती तो मैं तहज्जुद में रो रो के न्यूटन के लिए दुआ करता, लेकिन अल्लाह ने हम पे क्या लगा दी है कि जो मुझे नहीं मानता उसके लिए आपको दुआ करने की इजाजत नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो मानता था कि नहीं मानता था, तौहीद परस्त था या नहीं था, ये मेरा एडिक नहीं है, इसलिए मैं ना उसको जन्नती कह रहा हूं ना जहन्नमी कह रहा हूं। वो अल्लाह को मानता था, तौहीद परस्त था तो ठीक है, अल्लाह जाने वो जाने। तो इसलिए कुरान का हासिल मेरे भाई यही है कि कौन है? अल्लाह है जिसको खुश करने, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।